नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक। पहले मुख्य समाचार। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा, देशभर में एलपीजी वितरकों के पास गैस आपूर्ति की कोई कमी नहीं है। एलपीजी गैस की शत प्रतिशत होम डिलीवरी सुनिश्चित करवाने के देहरादून में क्विक रिस्पांस टीम ने गैस एजेंसियों का निरीक्षण किया। सर्वोच्च न्यायालय ने गंगा किनारों और बाढ़ क्षेत्रों में अवैध निर्माण पर केंद्र सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी और प्रदेश में 20 मार्च तक बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। और अब समाचार विस्तार से। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देशभर में एलपीजी वितरकों के पास गैस आपूर्ति की कोई कमी नहीं है। मंत्रालय ने बताया कि एलपीजी बुकिंग में गिरावट आई है। लगभग 77 लाख बुकिंग दर्ज की गई है, जबकि इस महीने की 13 तारीख को लगभग 88 लाख बुकिंग दर्ज की गई थी। वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर भी प्राथमिकता के आधार पर वितरण के लिए राज्य सरकार को सौंपे गए हैं और अब उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध है। मंत्रालय ने बताया कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा खुदरा दुकानों पर ईंधन की कमी का कोई मामला सामने नहीं आया और पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति नियमित रूप से जारी है। मंत्रालय ने लोगों को घबराहट में खरीदारी न करने की भी सलाह दी है। इस बीच मंत्रालय ने पीएनजी और एलपीजी गैस कनेक्शन रखने वाले परिवारों को तत्काल प्रभाव से एलपीजी कनेक्शन सिलेंडर करने का निर्देश दिया है। पीएनजी कनेक्शन रखने वाले किसी भी व्यक्ति को घरेलू एलपीजी कनेक्शन रखने या वितरकों से एलपीजी रिफिल करने की अनुमति नहीं होगी। देहरादून जिला प्रशासन के निर्देशों के अनुपालन में कल जिले की सभी गैस एजेंसियों पर एलपीजी गैस का वितरण केवल होम डिलीवरी के माध्यम से ओटीपी आधारित व्यवस्था के तहत किया गया। इस व्यवस्था का उद्देश्य गैस एजेंसी और गोदामों पर अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित करना और वितरण प्रक्रिया को पारदर्शी व व्यवस्थित बनाना है। जिला प्रशासन की क्विक रिस्पांस टीम ने सक्रिय रूप से अपने अपने क्षेत्रों में आवंटित गैस एजेंसियों का भ्रमण कर गैस की आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्था का जायजा लिया। भ्रमण में सुनिश्चित किया गया कि गैस सिलेंडर का वितरण केवल होम डिलीवरी और ओटीपी सत्यापन के माध्यम से किया जाए। सभी गैस एजेंसी और गैस गोदामों पर होम डिलीवरी से संबंधित फ्लैक्स और सूचना पट चस्पा किए गए हैं। गैस आपूर्ति अथवा वितरण से संबंधित किसी भी समस्या या शिकायत के लिए नागरिक जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर 1-07-06-1-3-5-2-6-2-6-6-1-0-6-6-1-0-1-3-5-2-7-2-6-6-6 पर तथा व्हाट्सएप नंबर 7534826066 किया गया है। एलपीजी गैस की कालाबाजारी रोकने तथा शत प्रतिशत होम डिलीवरी सुनिश्चित करवाने के देहरादून जिले में क्षेत्रवार गठित क्विक रिस्पांस टीम ने गैस एजेंसियों के निरीक्षण किए हैं। इस दौरान एलपीजी गैस की मांग आपूर्ति समेत अन्य सभी गतिविधियों का जायजा लिया गया। जिलाधिकारी सविन बंसल ने जिले में गैस आपूर्ति और वितरण बैकलॉग की स्वयं मॉनिटरिंग की है। इस बीच आदेशों का उल्लंघन करते हुए शहीद हीरा गैस एजेंसी शिमला बाईपास के सिलेंडर जिला प्रशासन ने जब्त किए हैं और गैस एजेंसी स्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। उधर हरिद्वार पूर्ति निरीक्षक कनखल में भी पुष्पक गैस सर्विस कनखल के सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी कर 2 दिन के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। स्पष्टीकरण का जवाब न देने पर एजेंसी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही अमल में लाने के भी निर्देश दिए गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए फास्टैग वार्षिक पास के लागू शुल्क को 75 रूपये बढ़ाकर 3,075 रूपये करने की घोषणा की है। बढ़ा हुआ शुल्क 1 अप्रैल से लागू होगा। ये पास वैध फास्टैग वाले सभी गैर व्यावसायिक वाहनों के लिए लागू है। सरकार ने पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन और अनुशंसाएं आमंत्रित की है। गृह मंत्रालय ने बताया कि पुरस्कारों की घोषणा अगले वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाएगी। नामांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई होगी।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को गंगा नदी के किनारों और बाढ़ क्षेत्रों में अवैध निर्माण के संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने और अतिक्रमण हटाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देने का निर्देश दिया है। अदालत ने केंद्र सरकार से गंगा के पुनर्जीवन, संरक्षण और प्रबंधन संबंधी अधिसूचना के क्रियान्वयन और क्रियान्वयन के लिए अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी देने को भी कहा। गंगा घाटी के कई राज्यों को नोटिस जारी करते हुए अदालत ने कहा कि इस मुद्दे पर व्यक्तिगत मामलों से परे व्यापक जांच की आवश्यकता है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र से स्पष्टीकरण भी मांगा है कि अधिसूचना को प्रभावी ढंग से लागू करने और नदी के किनारों और बाढ़ के क्षेत्रों को अतिक्रमण से पूरी तरह मुक्त करने के लिए संबंधित प्राधिकरण अदालत से क्या निर्देश चाहता है। और अब बात उत्तराखंड के मौसम की। मौसम विभाग ने 20 मार्च तक प्रदेश के पर्वतीय जिलों में अधिकांश स्थानों पर तेज बारिश और 3200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई है। मैदानी जिलों के कई स्थानों पर हल्की से हल्की बारिश का भी अंदाजा है। इस दौरान ओलावृष्टि, आकाशीय बिजली चमकने और झोंकेदार हवाएं चलने की भी संभावना व्यक्त की गई। विभाग ने लोगों को मौसम खराब होने की स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर ठहरने और मौसम पूर्वानुमान के अनुसार ही यात्रा करने की भी सलाह दी है। इस बीच कल रात को प्रदेश के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। हरिद्वार जिले में आयोजित इस वर्ष की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत में 1879 वादों को निस्तारण किया गया है। इसके साथ ही लोक अदालत ने चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना क्लेम, पारिवारिक विवाद, सिविल वाद, श्रम विवाद, विद्युत अधिनियम एवं बैंक रिकवरी, शमनीय प्रकृति के मामलों को प्राथमिकता दी है, जिससे न्यायालयों में लंबित मुकदमों के बोझ को कम करने में बड़ी सफलता मिली है। प्रभारी सचिव ज्योति बाला ने बताया कि इस आयोजन में कुल 15 करोड़ से अधिक समझौता राशि का सेटलमेंट हुआ है।
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया और उसमें सिविल वादों का, प्री लिटिगेशन वादों का, बैंक से संबंधित वाद और आपराधिक वाद जो कि कंपाउंडिंग हो सकते थे उनका निस्तारण किया गया, जिसमें सभी लिटिगेंट ने बड़े उत्साह से भाग लिया गया, जिसमें हमने 18 बेंच बनाई गई थी, जिसमें लक्षर, दुड़गी और हरिद्वार की बेंच शामिल है। इसमें प्री लिटिगेशन में अभी तक के डाटा 310 केस निस्तारित हुए हैं, जिसमें 6 करोड़ से ज्यादा धनराशि का डिस्पोजल किया गया है।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव न्यायाधीश प्रदीप कुमार मणि के नेतृत्व में न्यायिक एवं स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के एक दल ने नैनीताल जिले के हल्द्वानी स्थित बनभूलपुरा इलाके में प्रभावित परिवारों के लिए प्रस्तावित पुनर्वास शिविर स्थलों का निरीक्षण किया है।
20 तारीख से हम ये कैंप शुरू करने वाले हैं, रिहैबिलिटेशन कैंप, और इसका जो प्रयास होगा वो ये होगा कि कोई भी घर इससे छूटे ना, हर घर तक हमारी पहुंच हो और हर घर के जो मुखिया हैं या घर के लोग हैं उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बताया जाए, उनसे फॉर्म भरवाया जाए और उनको जो योजनाएं हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की ओर से अवगत कराया जाए।
और अब एक नज़र आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। 5 राज्यों में चुनाव के ऐलान की खबर को सभी समाचार पत्रों ने पहले पृष्ठ पर प्राथमिकता दी है। हिन्दुस्तान समाचार पत्र लिखता है, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 9 से 29 अप्रैल के बीच होगा मतदान। दैनिक जागरण लिखता है, बंगाल में 2 चरणों में होगा चुनाव। जन समस्याओं के निस्तारण में कोताही न बरते अधिकारी, इस शीर्षक के साथ अमर उजाला खबर में लिखता है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में अपने निजी आवास और हेलीपैड पर रुककर सुनी लोगों की समस्याएं, समाधान के दिए निर्देश। रुद्रपुर में एनसीईआरटी की नकली किताबें मिली, इस शीर्षक के साथ हिंदुस्तान समाचार पत्र लिखता है, पुलिस, तहसील प्रशासन और शिक्षा विभाग ने गोदाम पर मारा छापा, 4 करोड़ की किताबें बरामद। और उत्तराखंड में बदले मौसम की खबर पर दैनिक जागरण लिखता है, 4 धाम और ऊंची चोटियों पर हुई बर्फबारी, मैदानी इलाकों में तेज वर्षा, मौसम की करवट से फिर हुआ ठंड का एहसास। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा देश भर में एलपीजी वितरकों के पास गैस आपूर्ति की कोई कमी नहीं। एलपीजी गैस की शत प्रतिशत होम डिलीवरी सुनिश्चित करवाने के देहरादून में क्विक रिस्पांस टीम ने गैस एजेंसियों का किया निरीक्षण। सर्वोच्च न्यायालय ने गंगा किनारों और बाढ़ क्षेत्रों में अवैध निर्माण पर केंद्र सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी और प्रदेश में 20 मार्च तक बिगड़ा रहेगा मौसम, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।